आज हम भगवान के एक अवतार के बारे में चर्चा करने वाले हैं, परशुराम। इनका वर्णन कई शास्त्रों में आता है, श्रीमद् भागवत में, महाभारत में, रामायण में और अन्य पुराणों में भी। भगवान के अनंत अवतार होते हैं। एते चांसकलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और अन्य जो भी अवतार हैं वो उनके अंश हैं या तो उनके अंशों के अंश हैं, जिनको कला कहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण अवतारी हैं। श्री कृष्ण के जो अनंत अवतार हैं वो भी कई श्रेणियों में होते हैं। नारायण, विष्णु, ये सब विष्णु तत्व कहलाते हैं। स्वयं साक्षात वो भी भगवान है। इनके अलावा भगवान के और एक तरह के अवतार होते हैं जिनको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं, अर्थात ये भी जीवात्मा होते हैं हम जैसे, लेकिन जिनमें भगवान ने विशेष शक्ति प्रदान की होती है और इस विशेष शक्ति की वजह से वो कोई अद्भुत कार्य कर सकते हैं और कर दिखाते हैं। तो परशुराम जी भी एक ऐसे शक्त्यावेश अवतार थे, बल्कि हैं, क्योंकि आज भी परशुराम जी हैं और उन्होंने बहुत सारे अद्भुत कार्य करके दिखाए। जो शक्त्यावेश अवतार होते हैं उनके विशेष कोई कार्य होते हैं जिनको संपन्न करने के लिए वो यहां पर भूतल पर अवतीर्ण होते हैं। जैसे कि नारद मुनि, ये भी एक शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। इनके अंदर भक्ति की शक्ति थी या है। चार कुमार, चतुष्कुमार, इनके अंदर ज्ञान की शक्ति थी। पृथु महाराज, जिनके बारे में कई सप्ताह पहले हम चर्चा कर चुके हैं, इनके अंदर प्रजा पालन शक्ति, किस प्रकार से सारे सृष्टि के प्रजा का पालन करना चाहिए वो विशेष शक्ति उनमें थी। उसी प्रकार से परशुराम, इनके अंदर भगवान ने विशेष शक्ति प्रदान की थी दुष्टों को दमन करने की, दुष्ट दमन शक्ति। तो परशुराम ने कई दुष्टों का नाश किया। तो परशुराम जी के बारे में जानने के लिए थोड़ा बहुत इतिहास में पीछे जाना होगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के कई पुत्र थे और उनमें से एक पुत्र का नाम अत्रि मुनि था। अत्रि मुनि की पत्नी का नाम था अनसुया। आपने इस जोड़ी का नाम अवश्य सुना होगा। अनुसुईया पतिव्रता स्त्रियों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाती हैं और उनके तीन पुत्र हुए। और पहले पुत्र का नाम था दत्तात्रेय, जो कि भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। दूसरे थे सोम, जो कि चंद्रदेव बने, वो ब्रह्मा जी के अंश अवतार थे। और तीसरे दुर्वासा मुनि, जो कि शिव जी के अंशावतार थे। सोम, जो कि बीच के पुत्र थे चंद्रदेव, उन्होंने तारा के माध्यम से एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम था बुध। बुध ने विवाह किया इला से और उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था पुरुरवा। पुरुरवा राजा बड़े बहुत मशहूर हैं वैदिक इतिहास में। पुरुरवा राजा के छह पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था विजय। विजय के वंश में ही आगे चौथी पीढ़ी में जहनू हुए। ये जहनू ने भी एक विशेष कार्य कर दिखाया। एक बार जब वो अपने आश्रम में बैठे थे और अचानक गंगा जी में बाढ़ आ गया, उनका आश्रम गंगा जी के तट पर था, और जब गंगा जी का बाढ़ आया और उनका आश्रम पानी के नीचे आ गया तो उनको थोड़ा बहुत क्रोध आया कि गंगा जी ने ऐसे हमारे आश्रम के साथ में क्यों किया। तो उन्होंने क्या कर दिया, सारे गंगा जी के पानी को पी लिया, सब कुछ सूखा कर दिया सारे गंगा जी को। और फिर सभी लोग, सब त्राही त्राही मच गया, सभी लोग आए तो जनू ने कहा ठीक है, तो अपने कान से गंगा जी को बाहर निकाल दिया, मुंह से अंदर पिया कान से बाहर निकाल दिया। इसलिए गंगा देवी को कभी कभी जहनु ऋषि के पुत्री भी माना जाता है, इसलिए उनका गंगा जी का और एक नाम है जाह्नवी। तो इस प्रकार से जहनु भी ये इनके परंपरा में आए, इनके वंश में आए। जहनु के वंश में ही छठे पीढ़ी में बाद में एक राजा हुए जिनका नाम था गाधी। महाराज गाधी की पुत्री थी जिनका नाम था सत्यवती। और ऐसा हुआ कि एक बार एक ब्राह्मण ऋषि थे जिनका नाम था ऋचिक मुनि। ये ऋचिक मुनि सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, इसलिए ये महाराज गाधी के पास आए और विवाह का प्रस्ताव सामने रखा। महाराज गाधी को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि ये तो एक वन में निवास करने वाले ऋषि मुनि, इनके पास कोई धन नहीं, कुछ नहीं, और कहां मेरी पुत्री जो इतने ऐश्वर्य में पली पोसी है और उसको कोई योग्य वर चाहिए। ये ऋचिक मुनि मेरे पुत्री के लिए योग्य वर नहीं है। लेकिन सीधे से बोल नहीं पाए तो उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मैं राजा कुश के वंश में आया हूं और राजा कुश के वंश में आने वाले लोगों का कोई स्थान रहता है, इसलिए हमारे पुत्री को विवाह में अगर देना है तो हमें दहेज चाहिए। अगर आप हमें 1000 सफेद घोड़े दे सकते हैं और वो इतने सफेद होने चाहिए जैसे चंद्रमा की रोशनी, और ये हर एक घोड़े का एक कान काला होना चाहिए, अगर ऐसे आप दहेज मुझे दे सकते हैं तो मैं मेरी पुत्री का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हूं। ऋचिक मुनि बड़े बुद्धिमान थे तो तुरंत समझ गए कि महाराज गाधी अपने पुत्री को विवाह में नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन इसलिए ऐसे कोई शर्त रखी है। लेकिन फिर भी ऋषियों के लिए, साधुओं के लिए कठिन काम भी कभी कभी आसान हो जाते हैं। तो ऋचिक मुनि सीधे गए वरुण देव के पास और वरुण देव के पास से ऐसे ही 1000 घोड़े लेकर आए, चंद्रमा की तरह सफेद और हर एक घोड़े का एक कान काला। और फिर महाराज गाधी उस समय इनकार नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। महाराज गाधी ने शायद सोचा नहीं होगा कि ऐसे संभव होगा ऋचिक मुनि के लिए करने के लिए, लेकिन जब मुनि ऐसे लेकर आए घोड़े तो उनको देना पड़ा हाथ उनके पुत्री का विवाह में। तो इस प्रकार से ऋचिक मुनि और सत्यवती का विवाह हो गया। अब महाराज गाधी और उनकी पत्नी अर्थात सत्यवती की माता पिता, उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी। अब पुत्री भी विवाह में दे दिया तो वो भी एक पुत्र चाहते थे, और ठीक उस समय सत्यवती और ऋचिक मुनि भी एक पुत्र चाहते थे। तो दोनों ने, मां बेटी ने, जाकर ऋचिक मुनि से निवेदन किया कि हमारे लिए कोई ऐसा आप पायस प्रसाद कुछ ऐसे दीजिए जिससे कि जिसका पान करके, जिसका सेवन करके हमें पुत्र हो। तो ऋचिक मुनि ने कहा ठीक है। तो उन्होंने यज्ञ का के आहुति डालकर जो प्रसाद वहां आया, फिर एक में जो सारा प्रसाद दो कटोरी में डाल दिया और एक में उन्होंने क्षत्रिय मंत्र कह दिया और दूसरे में ब्राह्मण मंत्र। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो ऋचिक मुनि की जो सास थी, जो महारानी थी, वो तो क्षत्रिय थी। महाराज गाधी को अगर पुत्र होना था तो क्षत्रिय पुत्र ही चाहिए था, और ऋचिक मुनि स्वयं ब्राह्मण थे तो स्वयं उनको एक ब्राह्मण पुत्र चाहिए था। इसलिए उन्होंने ऐसे सोचा कि इस पायस में, इस कटोरी में मैं ब्राह्मण मंत्र बोल दे रहा हूं, इसकी शक्ति प्रदान करता हूं ताकि ये मेरी पत्नी खा लेगी और उसको एक ब्राह्मण पुत्र हो जाएगा, और इस दूसरे कटोरी में जो पायस है उसके अंदर क्षत्रिय मंत्र से शक्ति प्रदान करूंगा, जिससे कि महारानी इसका सेवन करके उसे क्षत्रिय पुत्र प्राप्त हो जाएगा। लेकिन महारानी के मन में एक विचार आया। महारानी ने सोचा कि ऋचिक मुनि ने अवश्य अपने पत्नी के लिए एक श्रेष्ठ पायस कुछ रखा होगा, मैं तो आके पत्नी नहीं हूं, मैं पत्नी की मां हूं, तो मेरे लिए कोई निम्न श्रेणी का पायस रखा होगा, अपने पत्नी के लिए श्रेष्ठ वाला रखा होगा। तो महारानी ने अपने पुत्री सत्यवती से कहा कि तुम्हारा पायस मुझे दे दो, मेरा पायस तुम ले लो। तो सत्यवती तैयार हो गई और दोनों ने एक दूसरे के पायस खा लिए। जब ऋचिक मुनि वापस आ गए और उन्होंने ये बात सुनी तो हैरान हो गए और अपने पत्नी से कहा, अरे रे, तुमने क्या कर दिया, अभी तुम्हारा पुत्र एक क्रूर भयंकर क्षत्रिय होगा, मैं तो ब्राह्मण हूं लेकिन मेरा पुत्र ऐसे क्रूर क्षत्रिय बनेगा, और जो तुम्हारी मां का पुत्र होगा वो एक विद्वान ब्राह्मण होगा, मतलब उल्टा हो गया। तो यह सुनकर सत्यवती बड़ी उदास हुई, कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दीजिए, गलती हो गई, क्षमा कीजिए। तो ऋचिक मुनि ने कहा, जो यहां शक्ति मैंने प्रदान की है, इसमें जो मंत्र बोले हैं उनका फल तो होना ही है, वो निष्फल नहीं हो सकते, परंतु उसको इस बात को थोड़ा टाला जा सकता है। तो ठीक है, तुम्हारा पुत्र को एक क्रूर क्षत्रिय नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा पोता, तुम्हारे बेटे का बेटा क्रूर क्षत्रिय होगा, इतना मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो उधर गाधी महाराज के, महारानी को एक पुत्र हुआ, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, आगे चल के राजा भी बना वो, लेकिन ब्राह्मण प्रवृत्ति तथा आगे चल के मुनि बना। उनका नाम क्या था? विश्वामित्र। विश्वामित्र मुनि बने। और उधर सत्यवती के गर्भ में एक बच्चा हुआ और उसका नाम हुआ जमदाग्नि। फिर जमदाग्नि वो भी अच्छे ऋषि बने, ऋचिक मुनि भी अच्छे ऋषि थे तो ऋषि का पुत्र वो भी अच्छे ऋषि बन गए। और फिर रेणु की पुत्री थी जिनका नाम था रेणुका, तो रेणुका का विवाह जमदाग्नि ऋषि से हुआ। और इसके बाद फिर कई पुत्र हुए और इन पुत्रों में से सबसे छोटे का नाम था राम, यही परशुराम। बाद में उनका नाम परशुराम हो गया, लेकिन नाम वैसे रखा गया था केवल राम। उधर एक राजा थे जिनका नाम था कार्तिवीर अर्जुन। ये हई जाति के जो राजा थे, बड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने दत्तात्रेय के प्रति उपासना की थी, उनको प्रसन्न किया था और उनसे वरदान कई प्रकार के प्राप्त किए थे, और इन वरदानों की वजह से कार्तिवीर अर्जुन को सहस्र भुज मिल गए, हजार बाहें, हजार हाथ, और इतना ही नहीं, सारे योग सिद्धियां मिली, बलवान इंद्रियां, पूर्ण शक्ति, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र, खूब सौंदर्य और यौवन, ये सब दत्तात्रेय की कृपा से मिल गया। तो इस समय बहुत घमंड आ गया कर्तव्यवीर अर्जुन के हृदय में और सारे ब्रह्मांड में घूम फिरकर सबको कब्जे में कर लिया, वश में कर लिया। और ये इतना शक्तिशाली था ये कार्तिवीर अर्जुन कि इसने रावण को भी पराजित किया था। एक बार ऐसे हुआ कि कार्तिवीर अर्जुन नर्मदा नदी में स्नान कर रहा था और सोचा कि मेरे शक्ति का उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ वो करते रहते थे, कभी पहाड़ों को तोड़ डालते थे, कोई कुछ तो करना था, इतनी शक्ति थी, शक्ति के लिए कोई मार्ग नहीं था उसका उपयोग करने के लिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि शक्ति का उपयोग किया जाए नर्मदा नदी को रोकने के लिए। तो नर्मदा नदी का प्रवाह जो था वो चल रहा था, उन्होंने अपने सहस्र भुजों से पानी रोक दिया और रोकने की वजह से पानी वापस चला गया उल्टी दिशा में। और उधर ऊपर रावण अपने साथियों के साथ में बैठे थे। जब रावण वहां जहां बैठे थे वहां बाढ़ आ गया, क्योंकि उधर आगे नीचे कार्तिवीर अर्जुन ने पानी रोक दिया था, पानी लौट कर आ गया। तो इधर सब जब बाढ़ हो गया और रावण का जब मजा सब किरकिरा हो गया तो रावण बड़ा गुस्सा हो गया, कौन है जो मेरे मजा किरकिरा कर रहा है इस प्रकार से। तो नीचे जाते जाते फिर देखा कि यहां कोई एक व्यक्ति है और जो अपने रानियों के साथ में क्रीड़ा कर रहा है। तो रावण ने बड़े जोर से अपमान किया कार्तिकवीर अर्जुन का। कार्तिकवीर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, तुरंत रावण से युद्ध किया, आसानी से रावण को गिरफ्तार कर लिया, उसको एक साधारण मुजरिम की तरह बांध दिया और अपने महल में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। आसानी से हो गया। रावण जो इतना शक्तिशाली था और वो कार्तिकवीर अर्जुन के सामने एक छोटा बच्चे की तरह था, और कार्तिकवीर अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि उसने तुच्छ समझकर रावण को फिर छोड़ भी दिया, चलो जाओ तुम मेरे से क्या युद्ध करोगे, तुमको रख के क्या फायदा है, चलो जाओ। और बाद में एक मित्रता का समझौता भी कर लिया रावण के साथ में और फिर रावण चला गया वापस। इतना शक्तिशाली था ये कार्तिकवीर अर्जुन, सारे ब्रह्मांड को प्राय वश में कर लिया था। तो घूमते घूमते एक बार ये कार्तिकवीर अर्जुन उस वन में आए जहां जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। जमदग्नि ऋषि वहां अपने क्रिया आध्यात्मिक क्रिया यज्ञ वगैरह कर रहे थे और वहां पर अतिथि के रूप में कार्तिकवीर अर्जुन अपने साथियों के साथ में लेकर आया। अतिथि के रूप में आया लेकिन केवल अपना महत्व दिखाने के लिए आया था वास्तव में। जब जमदग्नि ऋषि ने देखा कि सारे क्षत्रिय आए हैं, राजा और उनके सैनिक इत्यादि, तो उन सब का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। और ये क्षमता थी उनमें क्योंकि उनके पास एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय मतलब वो गाय जो सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है, जैसे कि वशिष्ठ मुनि के पास भी था। जब विश्वामित्र मुनि जब वो राजा के लीला में थे, जब उस समय वो वशिष्ठ मुनि के पास गए थे, उनके पास भी ऐसी ही गाय थी, कामधेनु गाय, जिनका नाम था नंदिनी। तो उसी प्रकार से यहां जमदग्नि ऋषि के पास भी एक कामधेनु गाय थी और इस कामधेनु गाय की सहायता से एक ऐसे दावत दिया राजा कार्तिकवीर अर्जुन और उनके साथियों को, सैनिकों को इस प्रकार से स्वागत किया कि सारे सैनिक और राजा भी आश्चर्यचकित रह गए कि हम लोग भी इतना इस तरह से स्वागत नहीं कर सकते हैं। फिर कार्तिकवीर अर्जुन ने सोचा कि ये कामधेनु गाय तो मेरी होनी चाहिए। अपने सिपाहियों को कहा कि ये कामधेनु गाय ले लो और मेरे महल में ले जाओ, ये मेरी होनी चाहिए। और उस समय सारे कार्तिकवीर अर्जुन के सैनिकों ने कामधेनु गाय ले ली और वापस चले गए। और जब इस प्रकार से वो चले गए वापस, जाते जाते उन्होंने अपमान भी किया जमदग्नि ऋषि का। जब परशुराम वापस आए, उन्होंने देखा कि क्या हो गया है, तो उनको बड़ा क्रोध आया, सीधे अपना परशु उठाकर चले गए पीछा करते हुए कार्तिकवीर अर्जुन का। कार्तिकवीर अर्जुन की राजधानी थी माहिष्मति, नर्मदा नदी के तट पर। और जब वो पीछा कर रहे थे और जब वहां पास में पहुंचे तो कार्तिकवीर अर्जुन प्राय अपने राजधानी के द्वार पर ही पहुंचे थे। तो उन्होंने घूम के देखा तो क्या देखते हैं कि भयंकर दृश्य। ये परशुराम मृग चर्म धारण किए हुए, बालों को जटाओं में बांधकर, अपने परशु हाथ में लिए और दूसरे हाथ में अपना धनुष जो कि बहुत बड़ा था वो लेकर, बड़े क्रोधित अवस्था में लाल लाल आंखों से वहां सामने आ रहे हैं। तो बहुत भयभीत हो गया कार्तिकवीर अर्जुन और 7 अक्षोहिणी वर्ग अपनी सेना के भेज दिया, चलो युद्ध करो उनके साथ। लेकिन परशुराम ने अकेले इस 7 अक्षोहिणी वर्गों को खत्म कर दिया और वो सारा जो स्थली व स्थान था वो पैरों से, हाथों से, सरों से, शरीरों से पड़ गया उधर। और मानो ऐसा लगने लगा कि खून की नदियां बह रही हैं। और ये सब देखकर कार्तिकवीर अर्जुन को बहुत क्रोध आया, फिर अपने अस्त्र लेकर बाहर आया। कार्तिकवीर अर्जुन के 1000 हाथ थे तो 500 धनुष धारण किए थे, एक हाथ में धनुष तो दूसरे हाथ में तीर। तो अपने 1000 हाथों से 500 धनुष, तीर धनुष हाथ में लिए और ये 500 तीर धनुष वो तीर छोड़ रहे थे परशुराम की ओर। लेकिन परशुराम ने सीधे अपने ही एक बाण से उन 500 हाथों को काट दिया। और बाद में कर्तव्य अर्जुन के गर्दन को काट दिया और मार दिया, और इस प्रकार से कर्तव्य अर्जुन की हत्या हो गई। ये देखकर कर्तव्य अर्जुन के 10,000 पुत्र बहुत घबरा गए, वहां से भाग गए। और फिर कामधेनु गाय को वापस और उसकी बछड़ी को लेकर परशुराम वापस अपने पिता के आश्रम में लौट कर आए। जब पिता ऋचिक मुनि ने देखा, जमद अग्नि ने देखा कि परशुराम ने क्या किया है, तो वो दुखी हो गए। ऋचिक मुनि ने वैसे एक व्रत लिया था कि मेरे प्रति अगर कभी भी कोई अन्याय करे तो मैं उसका बदला कभी भी नहीं लूंगा, मैं उसको सहन करूंगा। तो जब जमदग्नि ऋषि के पास परशुराम वापस आए और कामधेनु गाय गाय के बछड़े को प्रदान किया वहां पर, तो उस समय जमदग्नि ऋषि ने कहा कि हे राम, तुमने जो किया ठीक नहीं किया, बड़ा पाप किया है, क्योंकि तुमने विश्व सम्राट या राजा की हत्या की है। राजा की हत्या ब्राह्मण की हत्या से भी अधिक पाप होता है, और राजा के शरीर में कहा जाता है कि सारे देवी देवता निवास करते हैं, क्योंकि वो तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। अगर राजा से छोटी गलती भी हो जाए तो इस प्रकार से उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत काम किया है तुमने। फिर भी अभी जो हो गया सो हो गया, तो तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। इसके लिए तुम तीर्थ स्थानों में जाना और पूरे समय भगवत स्मरण में बिताना। तो परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, तीर्थ यात्रा में गए, भगवान का स्मरण करते करते पूरा एक साल बीत गया, और उस एक साल के बाद में परशुराम वापस लौट कर आए। उधर माहिष्मती में कार्तिवीर अर्जुन के जो 10,000 पुत्र थे वो बहुत दुखी हो गए थे कि परशुराम ने उनके पिता का वध किया है, इसलिए वो सोच रहे थे कि कैसे बदला लिया जाए। तो एक बार जब परशुराम और उनके भाई सब जंगल में कोई काम से गए थे और जमदाग्नि ऋषि अकेले अपने आश्रम में ध्यान में बैठे थे, तो उस समय ये सारे पुत्र वहां पर आए और उन्होंने सीधा आक्रमण किया जमदाग्नि ऋषि के ऊपर। लेकिन इसके पहले एक और घटना हुई थी। यह घटना ये थी कि एक बार जमदाग्नि ऋषि की जो पत्नी थी जिनका नाम था रेणुका, वो अपने पति के लिए नदी के तट पर गई थी पानी भरने के लिए, और जब वो नीचे वहां पर गई थी तो अचानक गंधर्व लोक से कई गंधर्व आए, और उनमें से गंधर्वों के राजा जिनका नाम था चित्ररथ, वो भी कई अप्सराओं को साथ में लेकर आया था। और चित्ररथ, जैसे कि गंधर्व होते हैं, बहुत सुंदर थे दिखने में, और कमल पुष्प की माला इत्यादि देखकर रेणुका के हृदय में मन में थोड़ा बहुत आकर्षण हुआ, और उस क्रीड़ा को देखते देखते थोड़ा समय बीत गया। और जब होश आ गया तो रेणुका ने सोचा, अरे मेरे पति के यज्ञ का समय बीतते जा रहा है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं अब देर से पहुंच जाऊंगी तो क्या होगा। जल्दी जल्दी से वापस अपने पति के पास चली गई और चुपचाप सर नीचे करके खड़ी हुई सामने, और पानी का घड़ा नीचे रख दिया। जमदग्नि ऋषि बड़े तपस्वी थे, उनकी दृष्टि बड़ी तेज थी, उनको तुरंत समझ में आया कि मेरी पत्नी ने एक अपराध किया है। हालांकि वो मन में अपराध था, लेकिन फिर भी अपराध किया है। तो बहुत गुस्सा आया उनको, उन्होंने कह दिया अपने पुत्रों से कि अपनी मां की हत्या करो, तुरंत मां की हत्या करो। भाइयों ने इनकार कर दिया, तो फिर जमदग्नि ऋषि ने परशुराम से कहा, अपने भाइयों की भी हत्या करो और मां की भी हत्या करो। तो परशुराम जानते थे कि जमदग्नि ऋषि बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, और बड़े तेजस्वी और शक्तिशाली भी हैं, उनके अंदर बहुत योगिक शक्ति है, तो वो एक मृत व्यक्ति को जीवित पुनः भी कर सकते हैं, और अगर इनकी आज्ञा का पालन नहीं किया जाए तो इनका श्राप बहुत खतरनाक होगा। तो तुरंत बिना एक क्षण भी सोचे हुए परशुराम ने अपने भाइयों की हत्या की और अपने मां की भी हत्या की। और उस समय जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए, बोलने लगे, हे राम, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। परशुराम बड़े बुद्धिमान थे, वो जानते थे, उन्होंने अच्छी तरह से योजना बनाई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप ये कर सकते हैं, मेरी मां को और मेरे भाइयों को पुनः जीवित कीजिए, और ये भी कृपा कीजिए कि उनके अंदर ये याददाश्त नहीं रहे कि मैंने उनकी हत्या की थी। तब तो जमदग्नि ऋषि ने कहा तथास्तु। और फिर रेणुका देवी और उनके अन्य पुत्र फिर से जीवित हो गए और उन सबको लगा कि मानो वो निद्रा की अवस्था में थे, नींद से अभी अभी जागे हैं। उनको ऐसा नहीं लगा कि परशुराम ने हमारी हत्या की है, हम मर गए थे पुनः जीवित हुए, ऐसा उनको अनुभव नहीं हुआ, याद भी नहीं आया। तो खैर इसके बाद में जमदग्नि ऋषि जब एक बार अपने आश्रम में बैठे थे और भाई सब जंगल में काम से गए थे, तो उस समय कार्तिकवीर अर्जुन के जो 10,000 पुत्र थे जो बदला चाह रहे थे अपने पिता की हत्या के लिए, वो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आकर आक्रमण किया उन्होंने और जमदग्नि ऋषि का गर्दन काट दिया, उनको मार दिया और वो सर को लेकर चले गए और शरीर को छोड़ दिया वहां आश्रम में। आचार्य ये समझाते हैं कि वास्तव में जमदग्नि ऋषि हालांकि इतने शक्तिशाली ब्राह्मण थे, ऋषि थे, फिर भी उन्होंने भी एक गलत काम किया था कि अपने पत्नी को मारने का आदेश जो देना था वो गलत था। इतने छोटे अपराध के लिए मृत्यु दंड और अपने पुत्रों के हाथों से दिलाना ये उचित नहीं था, इसलिए इसका फल उनको ये मिला कि खुद उनकी हत्या हो गई। और इस प्रकार से जब हत्या हुई तो वहां पर रेणुका देवी पास में थी। रेणुका देवी ने उस कार्तिकवीर अर्जुन के 10,000 पुत्रों से बहुत प्रार्थना की, निवेदन किया कि छोड़ो मेरे पति को, मारो मत, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी। और रेणुका देवी जब शोक में हाहाकार मचा रही थी, हे राम देखो क्या हो गया है, तो जंगल में से परशुराम और उनके भाइयों ने अपनी मां की आवाज सुनी और दौड़ते हुए वापस आ गए आश्रम में और उन्होंने देखा कि क्या हो गया है, हमारे पिता की हत्या हो गई है और कार्तिकवीर अर्जुन के पुत्रों ने मेरे पिता का सर भी ले लिया है। तो बहुत शोक करने लगे कि हमारे पिता हमको छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। और परशुराम को इतना क्रोध आया कि परशुराम ने फिर अपना परशु, अपना धनुष और तीर उठाकर सीधे माहिष्मती की ओर निकल पड़े और वहां पर जाकर उन 10,000 पुत्रों की हत्या एक साथ में कर दी और ऐसे और सारे उनके गर्दन को काट कर जो उनके सर थे वो शहर के बीच में लगा दिए। और ऐसे प्रतीत हुआ कि शहर के बीच में कोई एक नया पहाड़ आ गया है, क्योंकि 10,000 पुत्र थे अर्थात 10,000 सर, काफी बड़ा पहाड़ हुआ होगा 10,000 सर। और इस प्रकार से वहां भी खून बह रहा था, खून की नदियां बह रही थी और इस दृश्य को देखकर सारे क्षत्रिय इधर उधर से भी घबरा गए। और परशुराम ने ठान लिया कि ये क्षत्रिय आजकल इतने दुष्ट हो गए हैं कि इनको खत्म ही करना होगा, और कोई उपाय नहीं है। ये लोग अभी संसार के जगत के नाक में दम बन गए हैं, बिल्कुल प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इनको मारना ही होगा। सब दुष्ट बने हैं और दुष्टों का दमन करना ही मेरे अवतार का कारण है। और इस प्रकार से परशुराम ने अपने परशु लेकर युद्ध करना आरंभ किया, धुआंधार युद्ध करने लगे। 21 बार उन्होंने पृथ्वीलोक के सारे क्षत्रियों का वध कर दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत में वर्णन करते हैं कि जब परशुराम युद्ध कर रहे थे कार्तिकवीर अर्जुन के 10,000 पुत्रों के साथ में, तो शुरुआत में काफी समय तक वो मन के गति से चल रहे थे और जब वो थक गए थोड़ा बहुत तो पवन की गति से चलने लगे। मन की गति क्या होती है? बिजली से भी तेज। अगर आप सोचेंगे अमेरिका के बारे में, इसका मतलब है मन अमेरिका चला गया। अमेरिका कितना दूर है? हजारों मील दूर है, लेकिन एक क्षण में भी आपका मन बेलगाम से अमेरिका चला गया। वहां जाइए मत, अभी खतरा है वहां पर, बेलगाम ही ठीक है। लेकिन फिर भी कहने की बात है कि मन बहुत तेजी से जा सकता है, एक क्षण में पृथ्वी का को घूम के आ सकता है। तो परशुराम इतने तेजी से अपने अस्त्र शस्त्र हिला रहे थे, वो खुद भी हिल रहे थे मन की गति से, और जब थक गए तो पवन की गति से। हम पवन की गति से क्या हिल सकते हैं? नहीं हिल सकते। लेकिन जब परशुराम थक गए तो इस गति से चल रहे थे। तो देखिए परशुराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनको विशेष शक्ति प्रदान की थी। यद्यत विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एववा तत्तत एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि जो भी कुछ संसार में तेजस्वी है, शक्तिशाली है, सुंदर है, हमें जानना चाहिए कि ये सब चीजें केवल मेरा एक अंश है। मम तेज अंश संभवम, मेरे अंश से उत्पन्न होता है ये सब। इसी प्रकार से परशुराम की शक्ति भी भगवान ने ही प्रदान की थी। तो 21 बार सारे क्षत्रियों को उन्होंने मार दिया, और उनके डर से यहां भारत में जो क्षत्रिय थे पृथ्वी लोक के कोने कोने में भाग गए और वहां पर बस गए वो। और इसलिए आज आधुनिक जगत में जो अलग अलग देश हैं, जैसे तुर्की है और ग्रीस है और जर्मनी इत्यादि, वहां के जो लोग हैं, जो राजा थे पहले, वो यहां से भागे हुए राजा थे सब, वहां पर जाकर अलग अलग दुनिया के कोने कोने में बसे हुए थे। उनकी भाषा पहले वही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो फिर वो संस्कृत भाषा के अंदर अपभ्रंश होने लगा, धीरे 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 से अलग अलग भाषाएं होने लगी, और इतने लाखों लाखों सालों के बाद में भाषाएं और संस्कृति बिल्कुल अलग अभी लगती है हमें, लेकिन मूल संस्कृति यही है, हमारी वैदिक संस्कृति। तो इस प्रकार से परशुराम ने क्या किया कि जिन क्षत्रियों का वध उन्होंने किया था, उन सब क्षत्रियों का खून जो है, उनको समंत पंचक नाम के जगह में 5 तालाब बनाए उस खून के। इतना खून, इतने क्षत्रियों का वध किया उन्होंने, कोई उनका सामना नहीं कर पाया। और फिर अंत में वो तपस्या किया उन्होंने, क्योंकि ये पाप है इतने लोगों को मारना, हत्या करना। और उसके पहले उन्होंने अपने पिता के सर को वापस लाया था और शरीर से जोड़कर कुश एक चटाई पे रखा था। और फिर क्षत्रियों का वध करके जब वो वापस आए, फिर उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए, और उनमें से मुख्य जो पुरोहित थे वो कश्यप मुनि थे। फिर यज्ञ संपन्न जब हो गए तो उन्होंने सारे पृथ्वी का राज, सारे पृथ्वी बल के वो कश्यप मुनि को सौंप दिया। क्योंकि परशुराम ने जब सारे क्षत्रियों का वध किया तो कोई राजा रहा नहीं, केवल परशुराम ही थे जो एकमात्र प्रभु थे, स्वामी थे। तो उन्होंने सब कुछ कश्यप मुनि के हवाले कर दिया और व्रत लिया कि अब से मैं युद्ध करना बंद कर दूंगा। तो उनका प्रायश्चित हो गया था, क्योंकि उन्होंने सारे यज्ञ किए थे, तपस्या किए थे, कुरुक्षेत्र में भी उन्होंने तपस्या की थी। आप में से जो कुरुक्षेत्र गए हैं आपने देखा होगा, वहां परशुराम की तपस्या भूमि है। हरियाणा में प्रांत में परशुराम को बहुत मानते हैं, वहां इष्ट देव परशुराम है, क्योंकि वहां जाकर उन्होंने तपस्या की थी। और यहां दक्षिण कन्नड़ में भी, कर्नाटक में भी वो परशुराम का क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि उन्होंने केवल अपने परशु से भूमि को बढ़ा दी और सागर से भूमि को वापस ले लिया। तो खैर, उन्होंने बहुत तपस्या की और वापस फिर पृथ्वी को कश्यप मुनि के हवाले कर दिया, और फिर वो महेंद्र पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। उस समय कश्यप मुनि ने उनको आदेश दिया था कि बस, और अब युद्ध करना बंद, क्रोध करना बंद, अभी केवल तपस्या कीजिए और ध्यान कीजिए भगवान के ऊपर। इस प्रकार से परशुराम वहां से चले गए। लेकिन ये कथा जो कि बहुत पुरानी है, परशुराम की लीला उधर समाप्त हुई नहीं। त्रेता युग में जब प्रभु रामचंद्र विश्वामित्र मुनि के साथ में मिथिला गए थे और उनका विवाह हुआ था, उसके बाद में भी श्री राम की मुलाकात परशुराम से हुई थी। इतिहास ऐसे है कि विश्वामित्र मुनि, जो कि परशुराम के नाना के बराबर थे, उन्होंने श्री राम और श्री लक्ष्मण को राक्षसों का वध करने के लिए दशरथ महाराज से लेकर गए थे। दशरथ महाराज चाहते नहीं थे, लेकिन वचनबद्ध थे, इसलिए उनको देना पड़ा था। और जब राक्षसों का वध हो गया, लौटते वक्त विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मिथिला राजा शिरध्वज जनक, वो अपने पुत्री सीता के लिए स्वयंवर की आयोजन करने जा रहे हैं, तो ये अच्छा होगा कि राम का विवाह सीता से होना चाहिए। तो वहां श्री राम ने शिवजी का एक जो विशाल धनुष था वो आसानी से बांध दिया और तोड़ भी दिया। ये शर्त रखा था महाराज जनक ने सीता देवी के विवाह के लिए। और फिर सीता देवी का विवाह श्री राम से हुआ और उर्मिला जो कि सीता देवी की बहन थी, छोटी बहन, उनका विवाह श्री लक्ष्मण जी से हुआ। और वशिष्ठ मुनि जो उस समय आए थे दशरथ महाराज के साथ अयोध्या से विवाह के लिए, उन्होंने शिरध्वज महाराज जनक से निवेदन किया कि आपके छोटे भाई कुशध्वज के दो पुत्रियां हैं, एक का नाम है मंडवी और दूसरे का श्रुतकीर्ति, इन दोनों का विवाह क्यों ना भरत और शत्रुघ्न से कर लें। तो महाराज जनक को बड़ी प्रसन्नता हुई और इस प्रकार से चार बहनों ने चार भाइयों से विवाह कर लिया मिथिला नगरी में। और विवाह के बाद विश्वामित्र मुनि हिमालय लौटकर चले गए और उधर दशरथ महाराज, वशिष्ठ मुनि, श्री राम, श्री लक्ष्मण लौटकर अयोध्या जा रहे थे। बीच रास्ते में अचानक दशरथ महाराज ने और अन्य उनके साथियों ने देखा कि कई पक्षियां बहुत जोर जोर से चीख रही हैं। ये एक प्रकार का अशुभ लक्षण है। और दूसरी ओर एक शुभ लक्षण भी दिख रहा था कि जो हिरण्य हैं वो बाएं ओर से उनके सामने से दाहिने ओर जा रहे थे। तो उस समय वशिष्ठ मुनि को उन्होंने पूछा कि आपको क्या लग रहा है कि इसके क्या हमें भविष्य में होगा। तो वशिष्ठ मुनि ने जवाब दिया, पक्षियों के चीखने से हम ये पहचान सकते हैं कि कोई अशुभ चीज होने वाली है, परंतु हिरणें जो हमारे बाएं ओर से दाहिने ओर जा रही हैं, इससे प्रतीत होता है कि खतरे के बावजूद कोई नुकसान नहीं होगा। और ठीक उस समय अचानक एक अंधकार सा आ गया, बहुत तेज पवन बहने लगा और धूल उड़ने लगी, नाना प्रकार के आवाजें आने लगी। और अचानक उस धूल के बीच में, अंधकार के बीच में से, जिसमें कि सारे लोग घबरा गए थे, केवल वशिष्ठ मुनि, महाराज दशरथ और राम और लक्ष्मण नहीं घबराए थे, बाकी सब घबरा गए थे। तो उस धूल के तूफान में से अचानक बीच में से परशुराम आए, वही मृगचर्म पहनकर और आंखें लाल लाल, क्रोध स्वरूप में, उग्र रूप में आए थे। उनके हाथ में परशु और साथ में एक बाण। और ये दृश्य देखकर सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, परशुराम ने तो व्रत लिया था कि अभी यज्ञ करने के बाद वो महेंद्र पर्वत पर रहेंगे, तो अभी यहां कैसे एक युद्ध के रूप में आ गए यहां पर। तो उस समय परशुराम ने देखा कि श्री राम वहां है और श्री राम को उन्होंने ललकार के कहा, हे राम, तुमने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है जनक महाराज के दरबार में, लेकिन मेरे पास विष्णु का धनुष है। अगर तुम वास्तव में शूरवीर हो तो तुम्हें ये विष्णु का धनुष तोड़ना चाहिए और फिर तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए योग्य हो जाओगे। तो ये बातें सुनकर दशरथ महाराज बड़े चिंतित हो गए, बहुत घबरा गए, क्योंकि वो श्री राम के लिए चिंतित थे। श्री राम तो केवल 16 साल के थे उस समय। तो दशरथ महाराज ने कहा कि हे मुनिवर, आपने तो वचन ले लिया है कि अभी आप अस्त्र शस्त्र त्यागने वाले हैं, अभी आप महेंद्र पर्वत पर जाकर केवल तपस्या और ध्यान करने वाले हैं, तो ये आपको उचित नहीं लगता कि आप यहां आकर मेरे छोटे से पुत्र को युद्ध में ललकारें इस प्रकार से। तो उस समय परशुराम ने बिल्कुल महाराज दशरथ के वचनों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और फिर श्री राम से आगे कहने लगे कि देखो, ये दोनों शिव जी का धनुष और विष्णु का धनुष, ये दोनों वास्तव में विश्वकर्म ने बनाए थे। अब हुआ ये कि एक बार देवी देवतागण ऋषि जानना चाहते थे कि शिवजी शक्तिशाली हैं या विष्णु, दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। यह भी एक प्रकार की लीला थी विष्णु, भगवान विष्णु की ओर से। तो उस युद्ध में विष्णु ने शिवजी को आसानी से हरा दिया। पहले अपने धनुष से ऐसे तीर चलाए कि शिवजी तीर ज्यादा चला नहीं पाए और फिर विष्णु ने जोर से एक हुंकार की, और हिंकार इतने जोर हो गए कि शिवजी वहीं की वहीं खड़े रह गए। उनके सारे इंद्रियां स्तब्ध हो गईं, इंद्रियां प्राय सूख गईं, कुछ कर ही नहीं पाए। तो ये देखकर सारे देवता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विष्णु ही श्रेष्ठ है। तो भगवान की लीला को और मधुर बनाने के लिए शिव जी को थोड़ा क्रोध आया कि देवी देवताओं ने मुझे निम्न श्रेणी का समझा है। तो उदास होकर शिव जी ने अपना जो धनुष है वो देवव्रत नाम के राजा को दे दिया, जो कि इक्ष्वाकु के वंश में आता था। और देवव्रत के वंश में आते आते ये शिव जी का धनुष महाराज जनक के पास आया था और उसी धनुष को श्री राम ने तोड़ दिया था। उधर भगवान विष्णु ने उनका धनुष ऋचिक मुनि को दिया था, ऋचिक मुनि ने उनके पुत्र जमदग्नि ऋषि को दिया था, और जमदग्नि ऋषि ने वैसे भी व्रत लिया था कि मैं ये धनुष उठाऊंगा नहीं। तो जमदग्नि ऋषि के हाथों से परशुराम के हाथ में आ गया था। तो परशुराम ने कहा कि वास्तव में मैंने सारे क्षत्रियों को वध करके इसी बाण से मैंने सब खत्म किया है, अब इस बाण को छुओ, इसको खींचो, इसको बांध दो और फिर तीर खींच के इसको खींच लो रस्सी, तब मैं मानूंगा कि तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो। तो प्रभु रामचंद्र जी ने आसानी से परशुराम के हाथ से जल्दी से वो धनुष छीन ली, और जैसे छीन लिए तो धनुष के साथ साथ उनके सारे पुण्य भी छीन लिए, और फिर आसानी से उसे पकड़कर धनुष के रस्सी को खींचा, तीर लगाकर खींच कर ज्यादा से ज्यादा जितना खींचता था उतना खींच के रख लिया। इस दृश्य को देखकर परशुराम आश्चर्यचकित हो गए। उनको कल्पना नहीं थी कि ऐसे ये राम कर सकते हैं, क्योंकि परशुराम अभी तक पहचाने नहीं थे श्री राम को। तो श्री राम ने कहा, अभी हे परशुराम, मैंने तो तीर अभी खींच के रखी है, इसको तो छोड़ना ही है कहीं ना कहीं, इसको निष्फल नहीं हो सकता, ये निष्फल नहीं हो सकता। तो मैं ये ऐसे जगह में छोड़ूंगा जहां जिससे कि आपके स्वर्गलोक की प्राप्ति नष्ट हो जाएगी। वास्तव में आपकी हत्या करनी चाहिए थी, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, और वैसे भी हमारे गुरु विश्वामित्र मुनि के ही आप रिश्तेदार हैं, तो हम आपको नहीं मार सकते, लेकिन ये जो तीर मैंने खींचा हुआ है इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए इस तीर से मैं आपके पुण्यों को नष्ट करता हूं जिससे कि आपके स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इस प्रकार से फिर राम ने तीर छोड़ दी आकाश में, और इस प्रकार से परशुराम को पता चला कि वास्तव में ये श्री राम स्वयं विष्णु है। फिर परशुराम ने क्षमा याचना की परशुराम से और कहने लगे कि हे राम, मुझे अभी पता चल गया है कि आप साक्षात विष्णु हैं, आप मेरे आराध्य देव हैं, क्षमा कीजिए कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। वास्तव में कश्यप मुनि ने मुझे कहा था कि इस स्थान में अब रहना नहीं, और इसलिए रात होने के पहले मुझे यहां से जाना चाहिए। तो मैं स्वर्गलोक तो नहीं जा सकता क्योंकि आपने तीर मारकर मेरे स्वर्गलोक की प्राप्ति के पुण्य खत्म कर दिए, लेकिन कम से कम मुझे वापस महेंद्र पर्वत में जाने के लिए अनुमति दीजिए, मैं वहां जाकर तपस्या करूंगा। रात होने के पहले मैं वहां जाना चाहता हूं क्योंकि कश्यप मुनि का आदेश मुझे ऐसा था। और इस प्रकार से प्रणाम करके परशुराम वहां से जल्दी से निकल पड़े जब श्री राम ने उनको अनुमति दे दी। इस प्रकार से परशुराम का जो धनुष था वो फिर श्री राम के पास आ गया, विष्णु का धनुष, मतलब खुद का धनुष। श्री राम और विष्णु में तो कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से परशुराम की लीला त्रेता युग में भी हुई, और द्वापर युग में भी परशुराम की लीला हुई थी, कई लीलाएं हुई, बल्कि इनमें से एक दो ही आपको सुनाना चाहते हैं। जब भीष्म देव विचित्र वीर के लिए योग्य पत्नी ढूंढना चाहते थे तो काशीराज की तीन पुत्रियों को वो ले आए थे, उनका नाम था अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो विचित्र वीर से दो बहनों ने विवाह कर लिया, अंबिका और अंबालिका, लेकिन अंबा ने नहीं किया क्योंकि अंबा ने अपने हृदय में राजा शाल्व को चुन लिया था। जब भीष्म ने सुना कि अंबा अपना हृदय किसी दूसरे को दे चुकी है तो उन्होंने योग्य समझा कि उनको छोड़ दिया जाए। और फिर जब अंबा शाल्व राजा के पास गई तो शाल्व ने कहा कि तुम्हारा स्पर्श किसी और पुरुष ने किया है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, जाओ भीष्म के पास, भीष्म से ही विवाह कर लेना। तो जब वापस भीष्म के पास आई तो भीष्म देव ने कहा, मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। तो अम्बा फिर चली गई परशुराम के पास, जो कि भीष्म देव के गुरु थे। भीष्म देव ने अस्त्र शस्त्र की विद्या परशुराम से सीखी थी। तो परशुराम ने भीष्म से कहा, इसके प्रति ऐसे अन्याय हुआ है। तो उस समय भीष्म देव ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया है, आजीवन पालन करना है मुझे। परशुराम ने कहा, या तो तुम इससे विवाह करो या मेरे साथ युद्ध करो। तो उस समय भीष्म देव ने कहा कि जो गुरु इस प्रकार से विवेक बुद्धि को खो देता है और समझता नहीं कि योग्य क्या है और योग्य नहीं, उचित क्या है और उचित नहीं है, और धर्म के खिलाफ ऐसे बोलता है, उसके खिलाफ युद्ध करने में कोई पाप नहीं है। तो भीष्म देव ने अपने तीर धनुष उठाए, परशुराम ने भी अपने अस्त्र शस्त्र उठाए, और दोनों के बीच में धुआंधार युद्ध हुआ। काफी समय तक युद्ध चलता गया, न भीष्म विजय प्राप्त कर पाए न परशुराम। बाद में परशुराम को पता चला कि मैं भीष्म देव को हरा नहीं सकता। तो फिर परशुराम ने कहा, ठीक है अब युद्ध समाप्त करें। ठीक है भीष्म, तुम्हारा व्रत जो है वो सही है, उचित है, इसलिए तुम अम्बा से विवाह नहीं करना मुझे मंजूर है। फिर वो चले गए। उधर अम्बा को बहुत क्रोध आया था। अम्बा ने तपस्या की और ये व्रत लिया कि मैं भीष्म देव की मृत्यु का कारण होने वाली हूं, और अगले जन्म में शिखंडी का रूप लेकर वो भीष्म का मृत्यु का कारण हो ही गई। लेकिन परशुराम ये लीला में भी आए, महाभारत की लीला में उन्होंने कर्ण को भी धनुर्विद्या प्रदान की थी। जब कर्ण गए थे वहां पर परशुराम के पास, तो वो जानते थे कि परशुराम क्षत्रियों से घृणा करते थे, और अगर कर्ण कहते कि मैं क्षत्रिय हूं तो अवश्य वो धनुर्विद्या प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जब परशुराम ने पूछा कि ठीक है तुम मुझसे धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो तुम कौन से वर्ण के हो, तो कर्ण ने झूठ बोला। कर्ण ने कहा, मैं ब्राह्मण वर्ण का हूं। तो ठीक है आओ मैं तुम्हें धनुर्विद्या सिखाऊंगा। बहुत कुछ सिखाया परशुराम ने कर्ण को। और एक बार ऐसे हुआ कि परशुराम विश्राम करना चाहते थे, और वो लेटे और अपना सर कर्ण के जंघाओं पर रखकर लेट गए। और अब ऐसे हुआ कि कर्ण के जंघाओं पर एक कीड़ा आया जो कि खून चूसता है, और खून चूसने लगा, बहुत दर्द हुआ कर्ण को। लेकिन कर्ण ने सोचा कि मेरे गुरु अभी अपना सर रख के मेरे पैर पे सोए हैं, मेरे जंघाओं पे सोए हैं, अगर इसको मारने के लिए मैंने पैर हिलाया तो उनकी नींद टूट जाएगी, नींद से जाग जाएंगे, ये अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने कर्ण ने दर्द सहन कर लिया, और वहां से खून जो है वो बाहर निकल पड़ा, पिचकारी की तरह बाहर आया, और वो खून परशुराम के मुख पर आ गया। और जब वो खून उनके मुख पर गिर पड़ा तो निद्रा से उनकी निद्रा टूट गई, जागे और देखे कि क्या हुआ है, और तुरंत परशुराम को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मण के लिए संभव नहीं है, इतना दर्द तुम्हें हुआ, इस कीड़े ने तुम्हारे इतना खून निकाल दिया, इतना काट लिया, लेकिन तुम स्थिर बैठे, इस दर्द को सहन किया। ब्राह्मण इस प्रकार का दर्द सहन नहीं कर सकता, केवल क्षत्रिय ही सहन कर सकता है, इसलिए तुम क्षत्रिय हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है। उस समय कर्ण ने जान लिया कि अभी मामला खुल गया है, अभी झूठ बोला नहीं चाहिए। तो कह दिया, हां मैंने आपसे झूठ बोला, मैं कर्ण हूं, मेरे से बहुत गलती हो गई, कृपा करके क्षमा कर दीजिए। लेकिन परशुराम का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो परशुराम ने शाप दिया, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मेरे जो धनुर्विद्या के मंत्र सबसे ज्यादा आवश्यक होंगे अस्त्र चलाने के लिए, तो तुम वो मंत्र भूल जाओगे, क्योंकि उस समय धनुर्विद्या बहुत सूक्ष्म विद्या थी, केवल मंत्रों के बल पे वो तीर धनुष और अस्त्र शस्त्र छोड़ा करते थे। और गुरु अपने शिष्य को धनुर्विद्या में जाते जाते ये आशीर्वाद देते थे कि जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है तुम्हारा हमेशा तुम उसको याद कर पाओगे। जैसे सांदीपनि मुनि ने कृष्ण और बलराम को आशीर्वाद दिया था, जब अवंतीपुर में कृष्ण बलराम ने 64 दिन सीखा सांदीपनि मुनि से, तो सांदीपनि मुनि ने ऐसे उनको आशीर्वाद दिया कि जो भी मैंने ज्ञान तुम्हें सिखाया है तुम कभी भी भूलोगे नहीं। तो जब गुरु शिष्य के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐसा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जब गुरु नाराज हो जाते हैं शिष्य के ऊपर तो ऐसा शाप देते हैं जैसे परशुराम ने दिया कि जो मैंने तुम्हें सिखाया ऐन वक्त पर जब तुम्हें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी तुम भूल जाओगे। और वाकई ऐसे हुआ, जब अर्जुन के साथ युद्ध चल रहा था कर्ण उस मंत्र को भूल गए और फिर कर्ण की हत्या हो गई। तो इस प्रकार से परशुराम महाभारत में भी आते हैं, रामायण में भी आते हैं, श्रीमद् भागवत में भी आते हैं इनका वर्णन। और ये महाभारत तो द्वापर युग में हुआ, अभी तो कलयुग है, क्या अभी परशुराम की लीला है? हाँ है, लेकिन वो तपस्या की लीला है, वो केवल महेंद्र पर्वत में है और वो ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कोई उनको देख नहीं सकेंगे अभी, हमारी इन आंखों से हम उनको देख नहीं पाएंगे। और जब कलयुग समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मा जी का ये कल्प जब समाप्त हो जाएगा तो अगले मनवंतर में, कल्प में नहीं, अगले मनवंतर में वो सप्तर्षियों में से एक बनेंगे। हर मनवंतर में देवी देवता बदलते हैं और सप्तर्षि भी बदलते हैं, जैसे हर चुनाव के बाद में मंत्री बदलते हैं, उसी प्रकार से हर मनवंतर के बाद में देवी देवता जो कि ये पदवी हैं, ये पद बदलते हैं, सप्तर्षि भी बदलते हैं। तो परशुराम ये अगले मनवंतर में सप्तर्षि में से एक बनेंगे और तब तक के लिए वो समय का इंतजार कर रहे हैं और महेंद्र पर्वत में चुपचाप वो ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से परशुराम की लीला है। परशुराम ने भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए जो क्षत्रिय दुष्ट और अत्याचारी बने थे उनका वध कर दिया, उनकी हत्या की और भगवान के वाणी को उन्होंने पूर्ण किया। जब भगवान बताते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कहते हैं कि साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए मैं बार बार इस भौतिक जगत में अवतार लेता हूं। तो अवतार अलग अलग तरह से लेते हैं, कभी विष्णु तत्व के रूप में आते हैं और कभी शक्त्यावेश अवतार के रूप में। तो परशुराम भी एक शक्त्यावेश अवतार थे। तो जब हम राम शब्द कहते हैं, राम अयोध्या के श्री रामचंद्र भी हैं, वो कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भी हैं और जमदग्नि पुत्र परशुराम भी हो सकते हैं, तो तीनों को राम कहते हैं। इस प्रकार से ये तीनों राम हमारे लिए पूजनीय हैं और इनका आश्रय लेकर हम हमारे जीवन सफल बना सकते हैं। ऐसे भगवान, उनके अनेक अवतार और उनके भक्तों के कथा सुनकर हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, भगवान के कथाओं के प्रति और आकर्षण बढ़ जाता है और कृष्ण प्रेम का हृदय हमारे हृदय में उदय हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। श्री परशुराम भगवान की जय। आपके कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी?
कृष्ण प्रभु जी,
हरे कृष्ण।
आपने बताया कि वो परशुराम क्षत्रियों से घृणा करते थे, इसलिए वो जो धनुर्विद्या है वो नहीं सिखाएंगे क्षत्रिय को, तो फिर भीष्मदेव ने उनसे कैसे सीख लिया?
क्योंकि भीष्मदेव बड़े भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए परशुराम ने सोचा कि ठीक है भीष्मदेव को सिखाना चाहिए, लेकिन वैसे वो नहीं करना चाहते थे, अपने शिष्यों में स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए कर्ण को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और कर्ण का फिर ये परिणाम हुआ कि अपने गुरु के प्रति अपराध करके उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।
कर्ण को सूत पुत्र मैं हूं ऐसा मालूम था, लेकिन वो क्षत्रिय इसको मालूम नहीं था। जब कृष्ण बताया वो क्षत्रिय है, बाद में मालूम हुआ।
हाँ, लेकिन जब दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा बनाया तब वो क्षत्रिय के पद उसको प्राप्त हो गया, क्योंकि द्रौपदी के स्वयंवर ने कर्ण भी आए थे वहां, और द्रौपदी को मालूम था कि अगर कर्ण आता है तो वो विजयी हो जाएगा, मुझे कर्ण से विवाह नहीं करना है। तो फिर द्रौपदी ने वहां घोषणा की थी ये केवल क्षत्रियों के लिए है। तो तुरंत उसी ही स्वयंवर में दुर्योधन ने घोषणा की कि मैं कर्ण को अंग देश का राजा नियोजित करता हूं। वो राजा बन गया तो क्षत्रिय की पदवी मिल गई। इस प्रकार से आपका कहना सही है कि केवल कृष्ण को मालूम था और कुंती महारानी को मालूम था, लेकिन फिर भी गुण से परशुराम पहचान गए कि ये तो क्षत्रिय है। और कहा प्रश्न को?
जो अभी कलयुग के अंत में कल्कि भगवान का अवतार होने वाला है, तो भगवान के कौन से प्रकार के अवतार हैं?
वो भी शक्त्यावेश अवतार माने जाएंगे, वो भी दुष्टों को दमन करेंगे, क्योंकि उस समय एक ही भाषा चलेगी, भगवान एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे। अब वो है तलवार की भाषा, दूसरी कोई भाषा लोग समझ नहीं पाएंगे, तो केवल सबको मारने की क्या उपाय रह जाएगा, और कोई मार्ग रहेगा नहीं। तो केवल थोड़े बहुत से भक्त रह जाएंगे और फिर सत्युग पुनः आरंभ हो जाएगा।
सत्युग में और हर युग में अवतार हुए, नहीं भी हुए, सभी अवतार। जब द्वापर गया तो भगवान श्री कृष्ण भी चले गए, और त्रेता युग में भी राम चले गए। तो इसमें ये परशुराम का तो इनसे भी पहले का था अवतार, तो उसमें वो अभी तक है ये आपने अभी बताया तो।
हाँ, ये जरूरी नहीं है कि भगवान के अवतार आने के बाद तुरंत चले जाएंगे। ज्यादातर जो विष्णु तत्व अवतार होते हैं वो आते हैं और तुरंत चले जाते हैं लीला करने के बाद, लेकिन ऐसे कई अवतार हो भी सकते हैं जैसे परशुराम, जो आकर रहते हैं क्योंकि उनको आगे चल के भी कोई काम करना है, सेवा करनी है उनको भगवान की। परशुराम, उन्होंने क्षत्रियों का वध तो कर दिया, लेकिन और जाके उनको सप्तर्षि की सेवा भी करनी है, और वो अगले मन्वंतर में है, इसलिए अभी तक वो यहां पर इंतजार कर रहे हैं महेंद्र पर्वत में। तो ये आवश्यक नहीं है कि हर एक अवतार आकर तुरंत वापस चले जाए। हो सकता है अगर उनके कोई काम हो तो भगवान को कहे और थोड़ी देर रह जाओ, पोस्टिंग बढ़ा देते हैं।
जी, हरे कृष्ण। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो रेणुका देवी करके है, जो घर घर में आता है, वो शरीर में आते हैं और उसका पूजा भी करते हैं लोग, तो उसका क्या है?
कुछ नहीं है। भगवान की पूजा के अलावा और कोई भी पूजा का आध्यात्मिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं है। लोग किसी की भी पूजा करते हैं अपने मनगढ़ंत ढंग से, अपनी कल्पना से पूजा करते हैं और सोचते हैं कि यही सच्चा धर्म है, लेकिन यह भगवत गीता का निष्कर्ष नहीं है। भगवत गीता में भगवान साफ बताते हैं कि हमें केवल उनके शरण में जाना चाहिए और किसी दूसरे के शरण में नहीं जाना चाहिए, और उनके भक्तों के शरण में जाना चाहिए बस। तो उन्हें देवी देवताओं इनकी उनकी उपासना करने से कुछ लाभ नहीं होगा, रजोगुण और तमोगुण में आता है। सत्वगुणी लोग तो ऐसा नहीं करते हैं।